जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय यशोदनन्दन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदनन्दन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी Thank you. जय गौर हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल विष्णु भगवान परमहंस परिव्राज कचारी अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा वल्लभ ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सेवन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सेवन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सेवन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कल हमने कहाँ पर कथा को विश्राम दिया था, कौन बताएगा? कल की कथा में कौन कौन लोग थे, हाथ उठाई। तो कौन बताएगा, जो लोग थे कल की कथा में उनमें से कौन बताएगा कि कल हमने कहाँ पर विश्राम किया? कौन बताएगा?
सीता मैया द्वार पे खड़ी होकर भगवान राम के बारे में जो कर्म जो करना था उनको, जैसे राम भगवान उनके साथ बात करते हुए उनका पिताजी के साथ मिलने के लिए जा रहे थे द्वार पे।
नहीं, सबसे अंतिम बिंदु बताइए, सब कहाँ जहाँ हमने रोका है। हाँ, वो बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु?
सीता जी को
राम
बता रहे, मतलब
समझा रहे हैं कि तुम यहाँ रहो और मैं जा रहा हूँ वन में, और कैसे रहना है,
सब कुछ बता रहे हैं।
हाँ, किस तरह से है रहना चाहिए आपको, जिससे किसी प्रकार का तनाव ना पैदा हो, कोई बाधा ना आए। तो श्री राम समझा रहे हैं सीता जी को कि तुम्हें यहीं रहना है, 14 वर्ष के बाद मैं आऊँगा, तब तक तुम्हें कैसे रहना है, भोगों को नहीं भोगना है, श्रृंगार नहीं करना है, और मेरा गुणगान भी भरत के सामने नहीं करना है ना, तो ये सब बातें बताई। अब इसके आगे श्री राम के ऐसे कहने पर सीता जी, जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने के योग्य थी, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली। सीता जी को भी जो कोप हुआ है वो कैसा कोप है, प्रेम का कोप। सीता जी का जो क्रोध है वो किस प्रकार का है, प्रेम का है। प्रेम में भी क्रोध आता है ना। तो श्री राम समझा रहे हैं कि तुम यहाँ रहो, तो सीता जी को क्रोध आ रहा है, और वो क्रोध क्यों आ रहा है, श्री राम के प्रेम के कारण, कि ऐसी बात मुझे कैसे आप बोलते हैं, कि मैं यहाँ रहूँ और आप वन में जाएं। तो ये प्रेम का क्रोध है ना। प्रेम का क्रोध है। क्यों प्रेम है? क्योंकि श्री राम वन में जाएंगे और कष्ट भोगेंगे और मैं यहाँ महल में सुख भोगूं, तो सीता जी को प्रेम से प्रेम का क्रोध उत्पन्न हुआ। एवं मुक्ता तुवे देही प्रिया रहा प्रियवादिनी प्रणया देव संक्रोधा भरतारम इदम ब्रवीम। श्री राम आप मुझे ओछी समझकर ये क्या बोल रहे हैं? मैं इतनी ओछी हूँ क्या? सीता जी बोल रहे हैं आप मुझको इतना इतनी ओछी मान रहे हैं, इतनी नीच, मैं इतनी नीच हूँ? आप मुझे समझा रहे कि मैं यहाँ रहूँ और आप वन में जाएं, क्या मैं इतनी नीच हूँ? आप मुझे इतना नीच मान करके मुझे ये क्या बता रहे हैं? डांट रहे हैं श्री राम को। पत्नी पति को डांटती है लेकिन यहाँ पर कारण क्या है? प्रेम का है ना। किमिदं भाथ से राम है भाग्यम लघुतया ध्रुवम त्वया यदप्यहास्यं मे त्रुत्वा नरवरोत्तम। आपने जो कुछ कहा है वो वीर राजकुमार के योग्य नहीं है। क्या आपने जो कुछ कहा है वो आपकी वीरता के योग्य नहीं है? इसका मतलब क्या है कि आप वन में मुझे नहीं ले जा रहे हैं, आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं? सीता जी ने एक दूसरी बात पकड़ ली। ये वीर पुरुष के योग्य नहीं है, तो श्री राम तो सीता जी को नहीं ले जाना चाहते हैं क्योंकि वो कष्ट भोगेंगी। उन्होंने जो है दूसरी बात पकड़ ली कि ये आपके वीरता के अनुसार आपकी बात नहीं है। अपयश का टीका लगाने वाला है ये, जो आपने जो कुछ कहा है वो अपयश का टीका लगाने वाला है और सुनने योग्य नहीं है। आपने जो कुछ कहा है वो सुनने योग्य नहीं है, मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात। सीता जी बोलती है आपकी बात सुनने योग्य नहीं है। पत्नी को पति की हर बात सुननी चाहिए लेकिन ये बात नहीं सुननी चाहिए। तो सीता जी कहते हैं ये बात आपकी सुनने योग्य नहीं है, रिजेक्ट कर दिया। श्री राम की बात को एकदम रिजेक्ट कर दिया है ना। लेकिन क्यों? प्रेम के कारण है ना। वीराणाम राजपुत्राणाम शस्त्रास्त्र विदुषाम नृप अनर्हम ऐशस्यम चास्त्रो चनास्त्रोद्यम तो ये रीतम। आर्य पुत्र, पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्र वधु ये सब पुण्य कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। कौन? पिता हो चाहे माता हो, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र या पुत्र वधु, अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। आर्य पुत्र, पिता, माता, भ्राता, पुत्र तथा श्रुता स्वानि पुण्यानि भुञ्जाना स्वं संभाग्यम उपासते। केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। सीता जी कहते हैं क्या कह रहे हैं? अपने आप मुझे आज्ञा मिल गई। श्री राम कहेंगे इतनी तुमको तो वनवास नहीं मिला, मुझे वनवास मिला है, तुम यहाँ रहो। तो क्या कहते हैं कि पत्नी अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, आपको आज्ञा मिली वनवास की तो मुझे अपने आप मिल गई है। ये नहीं हो सकता है कि आप वन में जाएं और मैं जो यहाँ आ रहा हूँ। जैसे अर्धांगनी है, आधा अंग है, आधा शरीर, तो आप आधा शरीर छोड़ करके क्या जा सकते हो कि आप आधा शरीर घर में रहे और आधा शरीर बाहर जाए? क्या हो सकता है ऐसा? तो सीता जी करेंगी मैं आपका आधा शरीर हूँ। कितना अच्छा उन्होंने तर्क दिया है। भर्तुर्भाग्यम तो नार्य का प्राप्नोति पुरुष अतश्चैव अहमादिष्टा वने वस्तव्यम इत्यपि। स्त्रियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है, चाहे इस लोक में चाहे परलोक में। पति, पिता, पुत्र, माता, सखियां और अपना ही शरीर भी साथ नहीं देता। अपना शरीर भी नहीं है, साथ रहेगा, केवल पति का ही आश्रय मिलेगा। ना पिता ना आत्मा जो आत्मा, न माता ना सके जना, यह प्रत्यय नारी नाम पति रे को गति सदा। श्री राम, यदि आप आज ही वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी, आपके पीछे नहीं चलूंगी, आपके आगे आगे चलूंगी। और क्या करूंगी, कुशा और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी कि आपको ना लगे, कुशा कांटे आपको ना लगे, मैं कुचल कुचल करके आपके आगे चलूंगी। यदि तुम प्रस्थित हो दुर्गम वन मध्य राघव अग्रतस्ते गमिष्यामी मृदगंति कुश कंटकान। अतः वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके मुझे निशंक होकर साथ ले चलिए, मुझ में ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग रहे हैं, मैंने कोई अपराध नहीं किया। सीता जी कह रहे हैं, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया कि आप मुझे त्याग करके वन में जाएंगे। ईर्ष्यारोषम बहिष्कृत्य भुक्त शेषम बोधकम नये माम वीर विश्रंधा पापम मही न विद्यते। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इन सब के अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्वपूर्ण है। क्या कह रही हैं सीता जी, ऊंचे ऊंचे महलों में रहना या विमान पर चढ़ करके घूमना अथवा सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इससे अच्छा क्या है, पति के चरणों की छाया में रहना। प्रासादाग्रे विमान जगते निवान सर्वावस्था गता भरतो पादच्छाया विशेषते। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस समय इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। श्री राम बोले, ये तुम्हें कैसे व्यवहार करना है, बोले मुझे पहले से सब शिक्षा मिल चुकी है पिता माता से कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है ना, मुझे उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुशिष्टा मात्रा चा पित्रा चा विविधाश्रयम नाश में संप्रति वक्तव्या वर्तितव्यम यथा मया। अतः नाना प्रकार के जंगली पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों व्याघ्रों से सेवित पुरुष निर्जन वन में मैं अवश्य चलूंगी। श्री राम कहते कि नहीं, बहुत खतरनाक होता है जंगल और जंगली पशु होते हैं। सीता जी कहते हैं कि मुझे सब पता है, मैं जाऊंगी आपके साथ। अहम दुर्गम गमिष्यामी वनम पुरुष वर्जितम नाना मृग मृगणा किरणम शार्दूल गण सेवितम। मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी उसी प्रकार उस वन में भी सुखपूर्वक निवास करूंगी, मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। वहां तीनों लोकों के ऐश्वर्य को भी कुछ ना समझती हुई मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा करूंगी। तीनों लोकों का ऐश्वर्य मुझे नहीं चाहिए, मुझे पति की सेवा चाहिए। सुखम बने निवत्स्यामी यथैव भवने पितु अचिंतयन्ति त्रीन लोकान् चिंतयन्ति पतिव्रतम्। हे वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। सीता जी क्या करें, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और सदा आपके सेवा में रहकर आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरूंगी। जंगल में दुर्गंध नहीं होती, तो उन्होंने एक गुण ये लिया। हालांकि और मामलों में तो जंगल बहुत खतरनाक है, कांटे हैं है ना, और जंगली पशु हैं है ना, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वन में दुर्गंध नहीं होती है, क्या होती है, सुगंध तो होती है, ये सुगंधित वन में सुगंध है। शस्त्रो से मानाते नित्यम नियता ब्रह्मचारिणी सहरन से तो या वीर वने सु मधु गंध सो। श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? आपको रक्षा करने में कौन सा भार है? तुम ही कर तुम बने सकतो राम है संपरिपालनम अन्यस्यापि जनस्य है किम पुनर्ममे मानदे। अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूंगी, इसमें संशय नहीं है। मैं हर तरह चलने को तैयार हूं, मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता है। साहम तो या गमिष्यामी वनमध्य न संशयः नाहं शक्या महाभागे निवर्तयितुम् उद्यतां। वहां चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी। मतलब स्त्रियां अपने पति को कष्ट देती हैं, ये लाओ घर में ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये खरीद के लाओ, वो खरीद के लाओ। तो सीता जी कहते मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, हैं? मैं वहां चलकर आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी और प्रतिदिन फल मूल खाकर ही निर्वाह करूंगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह नहीं है, कोई संदेह मत करना कि वहां चल करके फिर चाहिए ये बिस्तर चाहिए, ये पलंग चाहिए, ये चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, हैं? तो कुछ संदेह नहीं करना कि मैं कुछ सब आपको कष्ट पहुंचाऊंगी। फलमूलासना नित्यम भविष्यामि न संशयम् न ते दुःखम् करिष्यामि निवसन्ति त्वया सदा। आपके आगे आगे चलूंगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूंगी। मेरे लिए आपको अलग से भोजन लाने की जरूरत नहीं है। क्या सीता जी क्या कह रहे हैं? मेरे लिए आपको अलग से भोजन भी लाने की जरूरत नहीं है। आप में जो खा लिया है, जो शेष बचेगा वही मैं खाऊंगी, मुझे अलग से कुछ नहीं चाहिए खाने के लिए। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप प्राणनाथ के साथ निर्भय हो वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवरों को देखूं। अग्रतस्ते गमिष्यामि मोक्षे भुक्तवते त्वयि इच्छामि परतः शैलान् पल्लवानि सरांसि च द्रष्टुं सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता। मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ कमल के फूलों से शोभित हैं और जिनमें हंस और कारण्डव आदि पक्षी भरे रहते हैं। हंस कारण्डवा गिरना पद्मिनी साधु पुष्पिता इच्छेयम् सुखिनी दृष्टम त्वया वीरेण संगता। आर्यपुत्र आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरों में स्नान करूंगी और आपके साथ वहां सब और विचरूंगी, इससे मुझे परम आनंद का अनुभव होगा। अभिषेकम करिष्यामि ताजु नित्यम मनोव्रतान सह त्वया विशालाक्ष दंशे परम नंदिनी। इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। 14 साल तो कुछ नहीं है, क्या 14 साल तो कुछ नहीं है, कितना सैकड़ों हजारों वर्षों भी आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा कि नहीं अब 100 साल हो गए हैं, अब तो चलो घर अयोध्या चलो, नहीं 1000 साल हो गए हैं अब तो चलो अयोध्या महल चलो महल में, नहीं मुझे कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ ना हो तो मुझे स्वर्ग भी अभीष्ट नहीं है, आपके बिना स्वर्ग भी नहीं जाना चाहती हूँ। एवं वर्ष सहस्राणी शतम वापि त्वया सह व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि हि न मे मतः। श्री राम आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग मिल रहा हो तो वो मेरे लिए रुचिकर नहीं है, मैं उसे नहीं लेना चाहती हूँ। स्वर्गे पिचा बिना वासो भविता यदि राघव त्वया बिना नर व्याघ्र नाहम तदपि रोचये। प्राणनाथ, अतः उस अत्यंत दुर्गम वन में जहाँ हजारों मृग बानर और हाथी निवास करते हैं, मैं अवश्य चलूंगी और आपके ही चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी तरह सुख से रहूंगी जैसे पिता के घर में रहा करती थी। अहम गमिष्यामि वनम सुदुर्गमम मृगायतम बानर वारणश्च वने निवस्यामि यथा पितुर्गृहे तवैव पादावपि गृहे सम्मता। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है, आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगा है? क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप मेरी यात्रा सफल करें, मुझे साथ ले चलें, यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। अरण्य भावा मनुरक्त चेतसम त्वया वियुक्ताम मरणाय निश्चिताम नैस्वमाम साधु गुरु सुयाचनाम नातो मया ते गुरुता भविष्यति। सीता की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। क्या समझे? सीता जी ने कितनी बातें बोली फिर भी श्री राम क्या कर रहे हैं? नहीं, वे उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए वहां के कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। तथा प्रमाणाम अपि धर्म वत्सलां न च स्म सीतां निवरो निधीसते वाच चैनां बहुसन्निवर्तने वने निवासस्य च दुःखितां पति। सीता के इस प्रकार कहने पर भी श्री राम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया। स एवं ब्रवतीम सीताम धर्मज्ञाम धर्मवत्सला नने तुम गुरुदेव बुद्धिम वने दुखानि चिंतयन। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। श्री राम उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए सांत्वना देते हुए बोले, शांतस्ताम तो बाष्प दोष तलोचनाम निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्य में तन्वाच। सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। कौन कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म में लगी रहती हो, अतः यहीं रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष होगा। सीते महाकुली नासी धर्मे चानरता सदा यहा चरस्तु धर्मम त्वं यथा मे मनसा सुखम। सीते, मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसे ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। श्री राम जो है पति के रूप में अपना अधिकार बता रहे हैं कि मैंने कहा तुम वैसा करो, क्योंकि मैं पति हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम यहीं रहो, तुम अबला हो। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं, उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। सीते यथा त्वाम बक्ष्यामि तथा कार्यम त्वया बले वने दोषा ही बाबो वस्तस्थान निबोध में। सीते, वनवास के लिए चलने का ये विचार छोड़ दो, वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त बताया जाता है। सीते विमुच्यताम ऐसा वनवास कृता मति बहुदोषम ही कांतारम वनमित्य भिधीयते। तुम्हारे हित के लिए मैं ये सब बातें कह रहा हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है वन में सदा सुख नहीं मिलता, वहाँ तो सदा दुख ही मिला करता है। हित बुद्ध्या खलु वचो मयतम न विधीयते सदा सुखम न जानामि दुख में वह सदा वनम। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्द को सुनकर उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। क्यों? उनको लगता है कोई शेर दहाड़ रहा है। अच्छा, इतनी हिम्मत तो वो दहाड़ने लगते हैं, झरने की आवाज को सुनकर के ही शेर दहाड़ने लगते हैं। उनकी गर्जना सुनने में बड़ी दुखदायिनी होती है, तुम्हें बहुत कष्ट होगा, शेर की गर्दना सुन करके बहुत कष्ट होगा। हालांकि शेर से तुम्हें कोई भय नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन शेर की गर्दना तो फिर भी आएगी, शेर की गर्दना तो सुनाई पड़ेगी। गिर निर्जर संभूता गिर निर्दय गिर निर्दरे वासिनाम सिंहानाम ननदा दुखा स्रोतम दुख मतो वनम। सीते शून्य वन में निर्मय होकर क्रीड़ा करने वाले मत वाले जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, अतः मन दुख से भरा हुआ है। क्रीड़माना च विस्रब्धा मत्ता शून्य तथा मृगान दृष्ट्वा समभिवर्तन्ते सीते दुख मतो वनम। वन में जो नदियां होती हैं उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं। क्या होता है? नदियों में ग्राह निवास करते हैं, उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना अत्यंत कठिन होता है। इसके सिवा वन में मतवाले हाथी सदा घूमते रहते हैं। इस सब कारणों से वन बहुत ही दुखदायक होता है। सग्राह सहितश्चैव पंगवत्यस्तो दुस्तरान् मत्तैरपि गजैर्नित्यम् अतो दुःख तरन्वनम्। वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं, वहाँ जंगली मुर्गे बोला करते हैं, उन मार्गों पर चलने में बड़ा कष्ट होता है और आसपास पानी नहीं मिलता, इससे वन में दुख ही दुख है। लता कंटक संकीर्णा कृक वाकूप नादिता निरपाश्चा सुदुखाश्चा मार्गा दुख मतो वनम। दिन भर के परिश्रम से थके मादे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछोने पर सोना पड़ता है, अतः वन दुख से भरा हुआ है। सुप्रते पर नसु स्वयं भगनासु भूतले रात्रिसु श्रमय खिन्ने न तस्मान दुख मतो वनम। सीधे वहां मन को वश में रखकर वृक्षों से सदा गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख देने वाला ही है। अहोरात्रम च संतोषा कर्तव्यो नियतात्मना फले वृक्षा वै पतित सीते दुख मतो वनम। अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटाओं का भार ढोना, बलकल वस्त्र धारण करना, यही वहाँ की जीवन शैली है। उपवासस्य कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिली जटाभारस्य कर्तव्यो वल्कलाम्बर धारणम्। देवताओं का, पितरों का और आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना, ये वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। देवतानां पितृणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकं प्राप्तानां अतिथीनां च नित्यसा प्रतिपूजनम्। वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है, इसलिए वन बहुत ही कष्ट देने वाला है। कार्यस्त्रिरभिषेकश्चा काले काले च नित्यसहं चरताम नियमेन तस्मान् दुःख तरम्बनम्। सीते वहाँ स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी होती है, इसलिए वन को कष्टप्रद कहा गया है। उपहारस्य कर्तव्या कुसुमे स्वयं आहृत आर्षेण विधिना विद्येद्याम सीते दुःख मतो वनम्। क्या करें श्री राम, क्या कष्ट है वन में, कौन बताएगा? अभी अभी जो श्री राम ने बताया वन का कष्ट, क्या बताया? नहीं, पूजा अर्चना तो करना है, लेकिन कष्ट क्या है इसमें? पूजा अर्चना तो महल में भी करना होता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन पूजा जो बताई गई है उसमें क्या कठिनाई है? नहीं, वहाँ स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा देवताओं की पूजा करनी, आपको स्वयं चुनना पड़ेगा फूल। महल में क्या है, बहुत से सेवक होते हैं, वो फूल ले आते हैं, लेकिन तुमको फूल स्वयं ही फूल लेने जाना होगा। उपहारस्य कर्तव्या कुसुमे स्वयमाहृतय आलसेन विधिना वेद्याम सीते दुःखमतो वनम्। वनवासियों को जब जैसा भोजन मिल जाए उसी पर संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख रूप ही है। महल में तो तुम्हारी इच्छा होती है आज क्या खाएं, पकौड़ा खाएं, और आज जो है सेम की सब्जी खाना है, आज चने की सब्जी खाना है, तो वही मिलेगा। लेकिन वन में जो मिल जाए उसी में संतोष करना पड़ेगा, अतः वन दुख रूप है। यथा लब्धेन कर्तव्या संतोषस्ते न मैथिली यथा हारेर वन चरे सीते दुख मतो वनम। वन में प्रचंड आंधी क्या होता है, वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट और भी बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टप्रद है। अतएव मातस्तिमिरम बुभुक्षा चाति नित्य सहम भयानि चा महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम्। देवी वहाँ बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं बीच रास्ते में विचरते रहते हैं, अतः वन बड़ा कष्टदायक है। शरीर सर्पाश्च भावो बहुरूपाश्च भामिनी चरन्ति पतिते दर्पात् ततो दुःखतरं वनम्। जो नदियों में निवास करते और नदियों के समान ही कुटिल गति से चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं, नदी की तरह टेढ़ी मेढ़ी चाल सांपों की, नदियों में टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं और नदियों की तरह सांप भी टेढ़े मेढ़े चलते हैं, ऐसे बहुत से सांप रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं, इसलिए वन बहुत कष्टदायक। तुम देखोगे जंगल में रास्ते में कैसे कैसे सांप पड़े हुए हैं, तो कैसा लगेगा, बहुत कष्ट होगा तुम्हें। नदी नीले यना सर्पां नदी कुटले गामिनः तिष्ठन्त्या वृत्त्य पंथानम अतो दुःखतरं वनम्। देवी पतंगे बिच्छू कीड़े टांस और मच्छर वहाँ सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं, अतः सारा वन दुख रूप ही है। पतंगा वृश्चिका कीटा दंसांश्चा मृषकेशः बाधन्ते नित्यमबले सर्वं दुःखमतो वनम्। देवी वन में कांटेदार वृक्ष कुशा और काश होते हैं जिनके शाखाओं के अग्रभाग सब और फैले हुए होते हैं, इसलिए वन विशेष कष्टदायक होता है। द्रुमाकंटकेनश्चैव कुशाकाशाश्च भामिनी वने व्याकुल शाखाग्रास तेन दुःखमतो वनम्। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा दुख रूप ही होता है। काय क्लेशाश्च बहवो भयानि विविधानि च अरण्यवासे वसतो दुःखमेव सदा वनम्। वहाँ क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है। जंगल में आप क्रोध और लोभ नहीं कर सकते, तपस्या में मन लगाना पड़ता है और जहाँ भय है वहाँ भी भयभीत ना होने की आवश्यकता होती है, अतः वन में सदा दुखी दुख है। क्रोध लोभ विमुक्तव्य कर्तव्य तपसे मति न भेतव्यम न भेतव्ये दुखम नित्य मतो वनम्। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है, वहां जाकर तुम कुशल पूर्वक नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का कारण है। तदलम ते वनम गत्वा क्षेम नहीं वनम तब विमृशन्य विपश्यामि बहुदोषः करम वनम। जब श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया तब सीता ने भी उनकी उस बात को नहीं माना, वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। वनम तुने तुम न कृता मतिर यदा बभूव रामेण तदा महात्मना न दर्श सीता वचनम चकार तम ततो ब्रवीद राममिदं सुदुखिता। श्री राम की ये बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ, उनके मुख पर आंसू की धारा बह चली और वे धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगी। एतत्तु वचनम श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता प्रसक्ताश्रु मुखी मंदम इदम वचनम अब्रवी। प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। क्या बोले?
जो दोष है वो गुण बन जाएंगे।
हाँ, जो कुछ भी दोष आपने बताए हैं आपके साथ रहते हुए वो मुझे गुण बन जाएंगे। ये तो या कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यताम प्रति गुणानित्येवतां विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता। श्री राम मृग सिंह हाथी शेर सर्प चमरी गाय नील गाय और जो अन्य जंगली जीव हैं वे सब के सब आपका रूप देकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे। मृगा सिंघा गजाश्चैव सार्दूला सर्वास्तथा चमराश्रमराश्चैव ये चान्ये वनचारिणः। अदृष्ट पूर्व रूपत्वात् सर्वे ते तव राघवं रूपं दृष्ट्वापि सर्पेयोस् तव सर्वे हि बिभ्यति। श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। क्या क्या होगा? मैं जीवन का परित्याग कर दूंगी। तो या चाह सह गंतव्यम मया गुरुजना गया तन्वियोगे न मेरा मैं त्यक्तव्यम ये जीवितम। श्री राम, आपके समीप रहकर देवताओं के राजा इंद्र भी मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते मेरा तिरस्कार? इंद्र भी नहीं कर सकते, फिर और दूसरों की क्या बात है। नहीं माम तत्समीपस्थाम अपि सक्रोपि राघवम सुराणाम ईश्वरा सक्ता प्रदर्शयितुम ओजसाम। श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी, ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। क्या कह रहे हैं सीता जी? सीता जी ने क्या कहा, कौन बताएगा? आपने ये बात भली भांति मुझे दर्शाई है। क्या बात दर्शाई, कौन बताएगा? हाँ नहीं, आपने क्या बात दर्शाई है? सुनिए ध्यान से। पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी, ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। क्या? पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, ये बात आपने भली भांति दर्शाई। अब आप मुझे क्या मारना चाहते हैं? सीता जी श्री राम के ऊपर दोष लगा रहे हैं कि अब आप मुझे क्या करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं? पति ही ना तो या नारी न साम सक्षते जीवितुम काममेवम विदम राम है तो या मम दर्शितम। यद्यपि वन में दोष और दुख ही भरे हैं तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय मैं ब्राह्मणों के मुख से पहले ये बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा, ये बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतं पुरापितृगृहे सत्यं वस्तव्यं किल मे वने। वीर, हस्तरेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ। लक्षणेभ्यो द्विजातेभ्यः श्रुत्वाहं वचनं गृहे वनवासः कृतोत्साह नित्यमेव महाबले। ब्राह्मणों से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक न एक मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, ये किसी तरह पलट नहीं सकता, अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूंगी। आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यासा मया किल सातुयासा भर्ता भर्त्राहं यास्यामि प्रियनान्यथा। ऐसा होने से मैं उस भाग्य के विधान को भोग लूंगी, उसके लिए ये समय आ गया है, अतः आपके साथ मुझे चलना ही है। इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। किस ब्राह्मण की बात सच्ची हो जाएगी? हाँ, वन में जाना है। कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह कालस्यायं समुत्पन्नः सत्यवान् भवतु द्विजः। इसमें क्या है? एक ही चीज है, वही पानी ना, अलग तो नहीं ना कुछ। वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं है। वनवास हे जानामि दुखाने बहुधा किले प्राप्यन्ते नियतम वीर पुरुष रक्तात्मा भी। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में, सुन रहे सब लोग, पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांति परायणा भिक्षुकी के मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी। क्या समझे? एक शांति परायणा भिक्षुकी ने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी मेरे बारे में। कन्या चा पितुर्गेहे वनवासा सुतो मया भिक्षिण्या समवेत्ताया मम मातुरिहाग्रतः। यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप से जान लें कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभीष्ट है। प्रसादितस्य वै पूर्वं त्वमे बहुतिथं प्रभो गमनं वनवासस्य कांक्षितं हि सह त्वया। आपका कल्याण हो, मैं वहाँ चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने सूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। कृतक्षणाहं भद्रं ते गमनं प्रतिराघवं वनवासस्य शूरस्य मम चर्या हि रोचते। आप मेरे स्वामी हैं, आपके पीछे प्रेम से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। शुद्धात्मन प्रेम भावाधि भविष्यामि विकल्मसाम भर्तारम अनुगच्छन्ति भर्ता ही पर देवतम। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा। क्या कह रहे हैं सीता जी? परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र कथा सुनी जाती है। प्रेत भावे हे कल्याणा संगमो में सदा त्वया सुतिर ही श्रूयते पुण्या ब्राह्मणा नाम यशस्वी नाम। हे वीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दे दी जाती है, वो मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। ये लोके च पितृभिर् या स्त्री यशम बल महाबल अंधिर दत्ता सुधर्मेण प्रेतभावे भी तस्य साम। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ, फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ लेकर चलना नहीं चाहते हैं? एवमस्मात् सुकाम नारीम सुवृत्ताम ही पतिव्रताम नाभिरोचय से ने तुम त्वम माम के ने हेतु नाम। श्री राम, मैं आपके भक्त हूँ, पतिव्रत का पालन करती हूँ, आपके बिछुए के भय से दीन हो रही हूँ, तथा आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाले हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्थाओं में समान रहूंगी। हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होंगी, अतः आप अवश्य ही मुझे साथ ले चलने की कृपा करें। भक्ताम पतिव्रताम दीनाम माम समाम सुख दुखयोम ने तुम अर्हसि काकुत्सह समान सुख दुखिनी। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते हैं तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूंगी, आग में कूद पड़ूंगी अथवा जल में डूब जाऊंगी। यदि माम दुखिताम एवं वनम ने तुम न चेच्छसी विषमग्निम जलम्बाहम आस्था से मृत्यु कारणम। इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थीं, तथापि श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। क्या समझे? सीता जी वन वास के पक्ष में बहुत बातें बोल रही, लेकिन श्री राम फिर भी वनवास के पक्ष में नहीं है कि सीता जी मेरे साथ वन में जाए। एवं बहुविधम तम सा याचते गमनम प्रति नानुमेने महाबाहोस ताम ने तुम विजनम बनम। इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने लगी। क्या समझे? सीता जी क्या कर रहे हैं? गरम गरम आंसू। शोक के आंसू गरम होते हैं और हर्ष के आंसू ठंडे होते हैं। तो सीता जी शोक के कारण गरम गरम आंसू बहा रहे हैं, है ना, कोई शोक हो रहा है उनको। एवं मुक्ता तुषा चिंता मैं दिले समुपागता स्नापयंती विकाम उष्णुर नयन च्युत। उस समय जानकी को चिंतित और कुपित देख मन को वश में रखने वाले श्री राम ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर समझाया। चिंतयंतीम तदा ताम तो निवर्तय तुम आत्मवान क्रोधाविष्टाम तो वैदेही काकुस्तो भव सांत्वयन। श्री राम के समझाने पर सीता वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। सांत्वमाना तु रामेण मैथिले जनकात्मजा वनवास निमित्तार्थम भर्तारम् इदम् अब्रवीम्। सीता अत्यंत भयभीत थी। किस बात से भयभीत थी? वन में जाने से भयभीत थी? नहीं,
वन में ना ले जाने के लिए।
हाँ, श्री राम के वियोग से भयभीत थी। भयभीत थी वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण श्री राम पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगी। सातमुत्तम संविघ्ना सीता विपुल वक्षसम प्रणयाचा अभिमानाचा परिचिक्षेप राघवम। श्री राम, क्या मेरे पिता जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं? क्या सुना? आक्षेप किया। क्या आक्षेप किया?
मेरे पिता ने
मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, क्या ये सोच करके कि आप केवल शरीर से पुरुष हैं लेकिन कार्य से स्त्री हैं? किम तो आमन्यत वैदेहा पिता में मिथिलाधिपहम राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम। नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि ये कहने लगे कि सूर्य के समान तपने वाले श्री राम में तेज और पराक्रम का अभाव है तो उनकी ये असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। क्या समझे? दुख की बात क्या होगी?
चला
जाए
आपको नहीं मानेंगे,
आप सब। ये कहेंगे कि श्री राम में तेज और पराक्रम का भाव है, इसीलिए पत्नी को नहीं ले गए। तेज और पराक्रम का भाव है इसलिए पत्नी को नहीं ले गए। अन्नदम बतरोकोयम अज्ञान यदि वक्षति तेजो नास्ति परम रामे तपति वै दिवा करे। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं अथवा किससे आपको भय हो रहा है जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का जो एकमात्र आपके ही आश्रित है परित्याग करना चाहते हैं किस कारण से? अब श्री राम तो बता रहे हैं कि बन के बहुत दुख है, सीता जी कहते हैं वो तो कोई कारण नहीं, बन के जितने दुख हैं वो तो कोई कारण नहीं, किस कारण से आप मेरा परित्याग करना चाहते हैं? किम ही कृत्वा विषण्यस्त्वं कुतो वा भयमस्तिते यत् परित्यक्तु कामस्त्वं मामन्य माम अनन्य परायणाम। जैसे सावित्री वीर सत्यवान की अनुगामनी थी, कौन सावित्री? वीर सत्यवान की अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी आज्ञा के अधीन समझिए। द्विमत्सेन सुतम वीरम सत्यवंत मनोवृताम सावित्री में माम विद्धि त्वमात्म वशवर्तिनी। हे श्री राम, जैसी दूसरी कोई कुल कलंकिनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है वैसी मैं नहीं हूँ, मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन में भी नहीं देख सकती। न तो हम मनसा त्वन्यम दृष्टास्मि त्वन्द्रते न गय त्वया राघव गच्छेयम् यथान्या कुलु कुलपांसनी। श्री राम, जिसका कुमार अवस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, क्या समझे? आया समझ? नहीं आया समझे? फिर से सुनिए क्या कह रही हैं सीता जी, बहुत अच्छे अच्छे तर्क दे रहे हैं श्री राम को जो है हराने के लिए। सीता जी बहुत अच्छे तर्क दे रहे हैं, क्या कह रही हैं? जिसका कुमार अवस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ, कुमार अवस्था, सीता जी 6 वर्ष की थी जब विवाह हुआ था, तो सीता जी 6 वर्ष की थी और 6 वर्ष की अवस्था में ही वो पूर्ण विकसित हो गया, दिव्य कन्याएं हैं, तो 6 वर्ष की अवस्था में ही पूर्ण विवाह के योग्य हो गई, है ना? तो मेरा विवाह आपके साथ हुआ था कुमार अवस्था में, और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। काफी बड़ी बात बोलती है, औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति आप मुझे दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। स्वयं तो भार्याम कौमारीम चिरमद्योषिताम सतीम सैलूस एव माम रामे परेभ्यो धातुम इच्छसी। आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राजाभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही बस वर्ती और आज्ञा पालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूंगी, क्या समझे? समझ आया? नहीं आया? फिर से सुनिए। आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञा पालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूंगी। भरत जी की हैं, श्री राम कह रहे तुम भरत जी के अनुसार चलो, तो आप चलो उनके अनुसार, मैं नहीं चलूंगी। ये सब है प्रेम की बातें हैं।
जिनकी वजह से आपका,
हाँ, जिनके कारण यस्य पथ्यम चरामाथ यस्य चार्थे वरुद्ध से त्वं तस्य भववर्ष्यश्च विधेयश्च सदा नघ। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तपस्या करना हो तो भी आपके साथ रहूंगी, स्वर्ग जाना है तो भी आपके साथ रहूंगी, और वन में जाना है तो भी आपके साथ रहूंगी, हर हालत में आपके साथ रहूंगी। कितना प्रेम है ना, ये जो है मतलब सुनने वाली बात है, सुनने लायक है ना, सोचने लायक है। क्या समाम अनादाय वनम, समाम अनादाय वनम तुम प्रस्थितुम अर्हसि तपोवायति वारण्यम स्वर्गो वास्यात् त्वया सह। जैसे बगीचे में घूमने, क्या बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं होगा। क्या बगीचे में घूमने में कोई परिश्रम नहीं होता और पलंग पर सोने में कोई परिश्रम नहीं होता है, उसी प्रकार से क्या
वन में चलने
आपके पीछे भी चलने में मुझे कोई परिश्रम नहीं होगा। नशामे भविता तत्र कश्चन पथि परिश्रम पृष्ठतस्तव गंचत्या विहार सैने सुवै। रास्ते में जो कुछ कांस सरकंडे सीख और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृग चर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। हरि बोल। प्राण वल्लभ प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। क्या समझे है प्रचंड आंधी के कारण हाँ मेरे शरीर पर धूल पड़ेगी तो मैं उसके क्या समझूंगी है उत्तम चंदन के समान। जब वन के भीतर रहूंगी तब आपके साथ घासों पर भी सो जाऊंगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। घास पर मैं सोऊंगी तो उसमें कितना सुख है, उतना सुख तो मुझे रंग बिरंगे कालीनों में मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर नहीं मिल सकता। साधुरेशु यदा शिष्य वनांतर वन गोचरं कुशास्तरण युक्तेषु किं स्यात् सुखतरं ततः। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत फल मूल या पत्ता जो कुछ दे देंगे वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। पत्रम मूलम फलम यत्तो अल्पम वायदि वा बहु दास से स्वयं आहृत्य तन्मे मृत रसोपम। ऋतु काल के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे उन्हें खाकर रहूंगी और माता पिता अथवा महल को कभी याद नहीं करूंगी। न मातुर न पितुस्तत्र स्मरस्यामि चमेश न वेश्मनाम आर्तवान्युपे भुंजाना पुष्पाणि च फलानि च। वहां रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देखेंगे, कोई भी व्यवहार मेरा उल्टा नहीं होगा, मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, मेरा निर्वाह आपके लिए भार नहीं होगा। न चा तत्र तदा किंचन दृष्टुम अर्हसि विप्रियम मत्कृते न च शोको मत्कृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा। आपके साथ जहां भी रहना पड़े वही मेरे लिए स्वर्ग है और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो वो मेरे लिए नरक के समान है। श्री राम मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वन को चलिए। यस्तु यासा स स्वर्गो निर्यो यस्तु या विनाम इति जानन पराम प्रीतिम गच्छ राम मया सह। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है, यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे तो मैं आज ही विष मिलूंगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूंगी। अथ मामेवम अव्यग्राम वनम नैव नैष्यसे विषमद्य पाश्यामि मावसं दिशताम गमम। नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन में चले जाएंगे तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। पश्चादपि दुखे न मम नैवास्ति जीवितम् उज्जिताया त्वया नाथ तदेव मरणं वरम्। आपकी विरह का ये शोक मैं दो घड़ी भी नहीं सह सकूंगी। कितना नहीं सह सकूंगी?
दो
घड़ी। कितना होता है? ये घड़ी 24 मिनट की होती है, तो दो घड़ी में 48 मिनट। तो आपकी विरह में ये शोक में दो घड़ी भी नहीं सह सकूंगी, फिर मुझ दुखिया से ये 14 वर्षों तक कैसे सहा जाएगा। इमं ही सही तुम शोकम मुहूर्तम अभी किम पुनर्दश वर्षाणी त्रीण चैकम च दुखिता। इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। सीता जी का कितना प्रेम है, और श्री राम जितना मना कर रहे हैं उतना उनका और चिंता और डर बढ़ता जाता है। इति सा शोक संतप्ता विलप्य करुणम बहु चुक्रोश प्रतिमायस्ता विषमालिंग सस्वरम। जैसे कोई हथनी विष में बुझे हुए बहुत से बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार क्या जैसे हथनी कैसी है? हाँ, विष के बाणों के द्वारा घायल कर दी गई, उसी प्रकार सीता श्री राम के अनेक वचनों द्वारा मर्माहत होती थी। अतः जैसे अरणी आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए आंसुओं की वर्षा करने लगी। साविद्धा बो भैरवा कैर दिग्धैर्य गजांगना चिर सन्नियतम वाष्पम विमोचाग्नि विवा विमोचाग्नि इवारणी। जैसे कोई हथिनी विस्मय बुझे हुए बहुत से बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार सीता अच्छा ये तो पढ़ दिया मैंने, इसके आगे उनके दोनों नेत्रों से निर्मल अश्रुजल झर रहा था मानो दो कमलों से जल की धारा गिर रही हो। तस्या स्फटक संकाशम वारि संताप संभवम नेत्राभ्याम परिसुस्राव पंकजाभ्याम एवोदकम। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वो मनोहर मुख संताप के कारण पानी से बाहर निकाले हुए कमल के समान सूख सा गया था। सीता जी का मुख कमल के समान है, यह भी राम के इस विचार से वो कमल सीता का मुख कमल सूख गया। जैसे क्या जैसे क्या होता है? पानी से बाहर निकाले हुए कमल के समान सूख गया। कमल को पानी से बाहर निकाल दो तो क्या होगा? सूख जाएगा ना। तत्सिताम अरे चंद्राभम मुखमाय तलोचनम परिशुष्यत बाष्पेण तलोद्भुतम एवाम भुजम। ताम परे स्वज्य बाहुभ्याम विसंज्ञाम में विदुखिताम वाच वचनम रामा पर विश्वासयंतदाम। सीता जी दुख के मारे अचेत से हो गई थी, श्री राम ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल कर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। ताम परे स्वज्य बाहुभ्याम विसंज्ञाम में विदुखिताम वाच वचनम रामा पर विश्वासयंतदाम। देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूंगा। अब सही रास्ते पर आए क्या बोले तुम्हें दुख देकर अगर मुझे स्वर्ग मिलता हो तो फिर मैं चीज नहीं लेना चाहूंगा, मेरा इरादा तुम्हें दुख देने का नहीं है। श्री राम बोले, ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है, न देवी बत दुखे न स्वर्गम अप्य भी रोचे, नेहमेस्ति भयम किंचन स्वयं भोरे वे सर्वता। यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूं, तो भी मैं तुम्हारे अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना उचित नहीं समझता था। श्री राम क्या कर रहे हैं, कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। तब सर्वम अभिप्रायम अभिज्ञाय सुभानने वासम दरोचे रन्ने शक्तिमान अपि रक्षणे। देवी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपने स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते। यत्सृष्टासी मया सार्थम वनवासाय मैथिली न विहातुम मया शक्या प्रीतिरात्मे वतायथा। तब सर्वम अभिप्रायम अभिज्ञाय सुभानने वासम नरोचे रन्ने शक्तिमान अपि रक्षणे। जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। सीते, पूर्व काल के सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था, उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूंगा, और जैसे सुवर्चला अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। धर्मस्तु गजनासोरो संधि संधि राजरिता पुराण तम चाहम मनुवर्तिष्ये यथा सूर्यम सुवर्चला। देवी, ये तो किसी प्रकार संभव ही नहीं कि मैं वन को ना जाऊं, क्योंकि पिताजी का वो सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। न खल्वहम न गच्छेयम वनम जनक नंदिनी वचनम तन्नयति माम वचनम तन्नयति माम पितुर सत्योपैप्रीहितम्। देवी, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। येष धर्मश्च सुश्रोणी पितुर्मातुश्च पश्य वश्यतां आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुम उत्सहे। ठीक है, अभी यहीं पर ही हम विश्राम करेंगे और कुछ और भी लीलाएं। यहाँ पर हमने 32वां श्लोक 32वें श्लोक पर छोड़ा है, अयोध्या कांड का 30वां अध्याय है, ये श्लोक संख्या 32 यहाँ पर हमने छोड़ा है। कुछ लीलाएं आजकल जो हुई हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ। लीलाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जो लीलाएं सीता जी से संबंध हुई, सीता जी के संबंध हुई हैं, उसको मैं सुना रहा हूँ आपको। ये घटना दिनांक 10 मई की है, 10 मई 2016 है? आज कितनी तारीख है? आज 12 है, आज 12 है, परसों की लीला है, परसों। आज के दिवस पर मैं प्रद्युम्न प्रिया प्रभु के साथ विचार कर रहा था कि आज से लेकर लगातार 4 दिनों तक मैं छिप्पीवाड़ा वाले मंदिर में रात्रि के समय सीता जी से संबंधित कथाएं सुनाऊंगा, क्योंकि सीता महारानी का आविर्भाव दिवस अत्यंत निकट अर्थात दिनांक 15 मई 2016 के दिवस पर आने वाला है। ये विचार तो मैं प्रद्युम्न प्रिया प्रभु के साथ कर रहा था, पर उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने जो ही मेरी डायरी को अनायास ही बीच से खोला, अनायास ही बीच से खोला, उस समय दिनांक 27 अप्रैल 2015 की दो ऐसी लीलाएं निकली जिनमें मेरे द्वारा सीता महारानी की कथा सुनाते समय अत्यंत आश्चर्य की घटनाएं हुई थी। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिस समय मैं ये विचार कर रहा था कि मुझे छिप्पी वाला मंदिर में आज से लेकर लगातार 4 दिनों तक सीता महारानी से संबंधित कथाएं सुनानी है। ठीक उसी समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु को डायरी के अंदर से 2 ऐसी लीलाएं मिली जिनमें सीता महारानी की कथा पढ़कर सुनाते समय मेरे सामने अत्यंत आश्चर्य की घटनाएं हुई थी। श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसे अद्भुत घटनायुग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब कल की लीला बहुत अद्भुत और बड़ी अचिंत है, तो सुनिए। ये घटना दिनांक 11 मई 2016 की है, तो समय तो मुझे भी पता नहीं चला लेकिन लीला कैसी हुई है, भगवान की लीलाएं बहुत अचिंत हैं। आज के दिवस पर मैं रात्रि के समय छिपी वाला वाले मंदिर में वाल्मीकि रामायण से सीताराम की कथा पढ़कर सुना रहा था। उस समय एक ऐसी आश्चर्य की घटना हुई जिसका पता भी बाद में श्री कृष्ण की कृपा से ही चला। इस घटना को भक्तगण अत्यंत ध्यान से सुने। सुन रहे आप लोग? जिस समय कथा चल रही थी उस समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु को नीचे बैठने में कुछ असुविधा होने लगी। ये प्रद्युम्न प्रिया प्रभु यहाँ पर है तो नीचे बैठे थे आप लोगों की तरह, इनको असुविधा होने लगी, अतः वे उस समय अपने निकट रखे हुए फोम के बने हुए एक आसन के ऊपर बैठ गए। ये घटना तो प्रद्युम्न प्रिया प्रभु के साथ हुई परंतु इसी प्रकार की घटना पांडव रक्षक प्रभु के साथ भी हुई। ये पांडव रक्षक प्रभु बैठे हैं कि उसी समय उन्हें भी नीचे बैठने में कुछ असुविधा हुई, अतः वे अपने निकट रखी हुई एक कुर्सी के ऊपर बैठ गए। ये दोनों घटनाएं इन दोनों भक्तों के साथ एक साथ हुई परंतु इन दोनों भक्तों को ये पता नहीं चला कि उनके अतिरिक्त दूसरे के साथ भी ये घटना हुई है। ये अपने हिसाब से बैठे, ये साथ साथ हुआ, ये दोनों एक साथ बैठे। केवल श्री कृष्ण ही जानते थे तथा उन्हीं के नियंत्रण में सभी घटनाएं हो रही थी। अब मैंने कथा के अंदर से ये शब्द पढ़कर सुनाए, उस समय राजा जनक विश्वामित्र मुनि तथा वशिष्ठ मुनि से इस प्रकार बोले कि हे मुनिवरो, आप दोनों ने हमारी 4 कन्याओं का महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के साथ विवाह निश्चित करके मेरे ऊपर अत्यंत कृपा की है। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ, आप दोनों कृपया इन श्रेष्ठ आसनों पर विराजमान होइए। ये शब्द तो मैंने कथा के अंदर से पढ़कर सुनाए परंतु ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिसमें प्रद्युम्न प्रिया प्रभु एक फोम के बने हुए आसन पर बैठे तथा पांडव रक्षक प्रभु एक कुर्सी पर बैठे, ठीक उसी समय मेरे मुख से जनक महाराज की विश्वामित्र मुनि तथा वशिष्ठ मुनि के लिए ये प्रार्थना निकली कि वे दोनों श्रेष्ठ आसनों पर विराजमान हो। यहाँ पर समझने की बात तो ये है कि उस समय केवल अमृत केशव प्रभु ने ही इस घटना पर ध्यान दिया कि जिस समय उक्त दोनों भक्त अपने अपने आसनों पर बैठे ठीक उसी समय कथा के अंदर से मेरी आवाज में जनक जी के ये शब्द निकले कि आप दोनों श्रेष्ठ आसनों पर विराजमान हो। जिस समय अमृत केशव प्रभु ने मुझे इस घटना की सूचना दी उस समय श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए प्रद्युम्न प्रिया प्रभु तथा पांडव रक्षक प्रभु के द्वारा क्रमशः फोम के बने हुए आसन तथा कुर्सी पर बैठने तथा उसी समय कथा के अंदर से मेरी आवाज में जनक जी के द्वारा विश्वामित्र मुनि तथा वशिष्ठ मुनि से श्रेष्ठ आसनों पर बैठने की प्रार्थना निकलने के ऐसे अद्भुत योग को समझकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। देखो कैसे आश्चर्य की घटनाएं होती हैं, है ना, मतलब कोई सोच नहीं सकता और भगवान का कितना नियंत्रण है कि ठीक उसी समय कथा के शब्द निकलते हैं और उस समय कैसी घटनाएं होती हैं। तो अब हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी।
तो
ये बहुत देर से सोच रहे थे है कि मैं बैठ जाऊं उस फोम के गद्दे में है, बहुत देर से सोच रहे थे और इनको पता नहीं था कथा के शब्द निकलने वाले हैं, अभी जब ये बैठेंगे तो कथा के शब्द वही निकलने वाले हैं। तो ये भगवान हृदय में बैठे हुए हैं है ना, और भगवान का कैसा नियंत्रण है ना, हम लोग नहीं समझ सकते। नहीं इन्होंने सोचा और एक साथ ये दोनों बैठे हैं, उससे मैं कहता दो महर्षियों के लिए बात निकली, आप लोग श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। तो अभी हमने जो कथा सुनी है तो बहुत इसमें विचार करने वाली बातें हैं ना। श्री राम का सीता के प्रति प्रेम है, इसलिए वे सीता को वन में नहीं ले जाना चाहते, प्रेम के कारण नहीं मना कर रहे हैं। और सीता का श्री राम के प्रति प्रेम है, इसलिए वे श्री राम के साथ वन में जाना चाहते है ना। दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम है, इस कारण से दोनों का एक दूसरे से विरोध हो रहा है ना। आजकल क्या है, पति पत्नी का विरोध होता है किस कारण से, काम के कारण। काम, काम और प्रेम बिल्कुल अंतर है, उल्टा, प्रेम का उल्टा एकदम काम है ना। तो इस जो पत्नी है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचती है, पति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचता है ना, तो इसलिए आपस में विरोध होता है ना। यहाँ पर सीता और राम का प्रेम कितना है और प्रेम के कारण विरोध हो रहा है ना। तो सीता जी ने वन में जाने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए कौन बताएगा, वन में जाने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए, बहुत सी बातें बताई, कौन बताएगा। हाँ जी,
उन्होंने तर्क दिया था कि जंगल में कोई दुर्गा नहीं होती, वहाँ पर फूलों की सुगंध होते हैं।
हाँ, वन में फूलों की सुगंध होती है, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, मुझे तो सुगंध मिलेगी फूलों की। हाँ, एक ये उन्होंने तर्क दिया। और गुण बन जाए, आपके साथ जो है मैं रहूंगी तो वन में जो जो भी दोष हैं वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, गुण बन जाएंगे। ये और कुछ कठोर बातें भी सुनाई, वो भी तो बताओ। सीता जी श्री राम को कुछ कठोर बातें भी तो सुनाई। हाँ,
आप अगर जो वन वन में नहीं लेके जाएंगे तो आपको लोग गलत सोचेंगे कि आप कर्म नहीं सकते।
हाँ, अगर आप मुझे वन में नहीं ले जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा दोष माना जाएगा कि आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं है, वीरता नहीं है, शक्ति नहीं है, आप शक्तिहीन हैं, आपको ये माना जाएगा। और मेरे पिता ने कैसे भी मेरा हाथ आपके हाथ में सौंपा था,
देखने के लिए पुरुष हैं,
देखने में तो आप पुरुष हैं और कार्य से आप स्त्री हैं। और अंत में जब श्री राम कहते हैं कि नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा है ना, तो उन्होंने क्या कारण बताया कि अभी तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और जब तक तुम्हारा मतलब पूरी तरह से निश्चय मैं ना देखूं तब तक मैं कैसे ले जा सकता हूँ। और हाँ जी,
मेरे हाथ देखकर ब्राह्मण ने बताया था कि मैं वन में रहने के लिए बोले भरत के राज्य में रहना नहीं चाहता हूँ।
हाँ, सीता जी ने कहा कि आप मुझे सिखाते हैं कि भरत के अनुसार मैं चलूं है, जबकि उनके कारण आपका राज्य भी से रुका है, तो उनकी उनके उनकी सेवा में आप रहिए, मैं नहीं रहूंगी उनकी सेवा। और सीता जी ने कहा
औरत की कमाई खाने वाले,
हाँ स्त्री की कमाई खाने वाले नट की तरह आप मुझे जो है दूसरों के हाथों में छोड़ रहे हैं, और सीता जी ने क्या कहा कि चाहे जो है तपस्या करना हो तो मैं आपके साथ रहूंगी, स्वर्ग जाना है तो भी आपके साथ रहूंगी, और वन में जाना तो भी मैं आपके साथ रहूंगी, मैं हर हालत में आपके साथ ही रहना है, और आपके बिना मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, है ना। इस तरह से बहुत सी बातें हैं कहीं, है ना। तो ये चरित्र जो है बहुत अद्भुत हैं, बहुत अद्भुत चरित्र हैं, और जितने हम सुनते हैं उतना ही उनमें नया नया रस मिलता है। ये बातें ऐसी नहीं है कि एक बार सुन लो और फिर उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं, इनमें नया नया रस मिलता है, जितने बार सुनते हैं जितने बार सुनाते हैं उतना ही रस मिलता है। ठीक है, धन्यवाद। श्री सीताराम कथा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा वल्लभ गौर निताई की जय।
श्री सीता मित्र जी की। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।